Krishna Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Balaram Das Sri Gaur Nitai Krishna Balaram Radha Bhairaneshwar Narasimhadev Shri Prabhupada ke charno mein baith kar Bhagwan Sri Krishna ke mukharvind se pravahit Bhagavad Gita ke sharan ke liye padhare aap sab ka swagat You're all welcome दिसंबर का महीना गीता जयंती का महीना है अपीयरेंस ऑफ गीता भगवद गीता भगवद गीता के प्रकट्य का ये महीना है सो टू ग्लोरीफाई द सॉन्ग ऑफ गॉड भगवान के गीत का महिमा द साइंस ऑफ लाइफ भगवद गीता जीवन का विज्ञान है प्रभुपाद यीशु Call it as the science of Krishna consciousness. It is a science. Jivan ka vigyan hai. A simple truth. The whole world is getting light from one sun. Right? एक ही सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है एनी डाउट अच्छा अमेरिका का अलग सूर्य नहीं है चाइना का भी अलग नहीं है चाइना सब कुछ बनाता है सूर्य नहीं बनाता वन सन इज गिविंग लाइट टू द होल वर्ल्ड एंड एवरीबडी इज टेकिंग फ्रॉम दैट वन सन And in Bhagavad Gita, Krishna says, he is my first student of Bhagavad Gita. Imam vivasvate yogam prokvam aham avyayam. This imperishable science I first imparted to sun gods vivasvam. What it means actually, what is implied in this? Implied in this is the message of Bhagavad Gita as universal. The one sun is giving light to the whole world, one message of Bhagavad Gita can enlighten the whole human society. Pure Vishwa Bharko enlighten karne ke liye, Atam Sakshatkar ke liye, Bhagavad Gita is a vigyan, it is science. This one, this simple one student of Bhagavad Gita is giving light to everybody. Waking everybody up. Everybody is working in a day. Sara din kaam karte hain. Then they maintain. So, ek Bhagwan ka bhakt pure duniya ka itna sara karya kar raha hai. That if the human being take advantage of the message of Bhagavad Gita, then how much really fruitful and peaceful life can be. So this is the universality of Bhagavad Gita. Therefore, Prabhupada used to call it the science of God, Bhagavad Vijnan, Bhagavad Gita, the science of life. It's not religion, Prabhupada never called it religion, it's not religion. So we are discussing one verse of Bhagavad Gita today, from 5th chapter. Usually Sri Prabhupada used to call 5th chapter, ko Prabhupada ji kehte the, Shanti Sutra. This chapter is the one verse which is the peace formula. Shanti Sutra means peace formula. So what is that verse? Kaun sa woh shlok hai panchve adhyay ka jo peace formula? Bhoktaram yajna tapasam sarva loka maheshwaram suharda sarva bhutanam gyatvamam shanti mrityati भगवान क्या कहते हैं मैं भोक्ता हूं आई एम एंजॉय भोक्ता का मतलब एंजॉय तो क्या एंजॉय करते भगवान, व्हाट यू वांट टू एंजॉय, एंड व्हाट इज ही सेइंग, यज्ञ, मैं एंजॉय क्या करता हूं, यज्ञ एंड तपस्या ऑस्टेरिटी। तो भगवान की एंजॉयमेंट सेंस एंजॉयमेंट है, यज्ञ और तपस्या को एंजॉय करते हैं। एंड व्हाट इज द यज्ञ दैट कृष्ण एंजॉयज, वो कौन सा यज्ञ है जो भगवान एंजॉय करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ। भगवद गीता इन 10th चैप्टर कृष्ण इज सेइंग यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, आफ्टर ऑल टाइप ऑफ यज्ञ माय एक्विवेलेंस इज जप, एंड इट इज लाइक स्थावराणाम हिमालय, नेक्स्ट लाइन इज स्थावराणाम हिमालय, दिस इज अनशेकेबल लाइक हिमालय, दिस यज्ञ इज अनशेकेबल, यू कैन ड्राइव दिस मीनिंग ऑल्सो, क्योंकि उसके बाद एकदम नहीं है, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मी स्थावराणाम हिमालय, हिमालय इज ऑल्सो विभूति, बट दिस जप इज अनशेकेबल, दिस यज्ञ इज वेरी पावरफुल यज्ञ, बहुत शक्तिशाली यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ है ये। तो भगवान इसको एंजॉय करते हैं, कृष्ण इज नॉट एंजॉयिंग एनीथिंग ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, भगवान भोग किसका करते हैं, यज्ञ और तपस्या का। तो हमको क्या करना चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करेगा, यज्ञ और तपस्या। और तपस्या क्या है, व्हाट इज तपस्या, हाँ 10 घंटा काम करने के बाद भगवद गीता सुनना, 1 घंटा बैठ के ये तपस्या है, घर से गए अब फिर भगवद गीता सुनना, ऐसे तो तपस्या ये, इससे चलिए मुश्किल से मुश्किल काम है बैठ के शास्त्र सुनना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए बहुत से लोग सोते ये इसका प्रूफ है, इट्स नॉट इजी रियली टू हियर, ये सुनना इतना आसान नहीं, और सुनने में भी समझना उससे ज्यादा मुश्किल है, सुन लेना तो है लेकिन समझना और ज्यादा मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड टू कंटेम्पलेट इज मोर डिफिकल्ट देन हियरिंग। भाई क्या सुनने के बाहर जाने के बाद कितना याद रहेगा, प्रसाद क्या खाया वो भी भूल जाएगा, कथा कहाँ याद रहेगा। और समझने के बाद प्रैक्टिकल में उसको लाना वो उससे भी मुश्किल है, और श्रवण कंप्लीट होता है जब उसको अभ्यास में लाया जाए, द हियरिंग इज कंप्लीट व्हेन इट इज अप्लाइड इन लाइफ प्रैक्टिस्ड। तो मुश्किल से मुश्किल काम है सुनना, तपस्या है सबसे बड़ी, 1 घंटा बैठना सुनना, इसलिए भगवत गीता और भागवत के 2 क्लास सुबह और शाम हमारे सबसे बड़ी तपस्या है। इस काम की तपस्या मंगल आरती उठना है और उसके बाद क्लास अटेंड करना, क्लास जो ज्यादा मंगल आरती उठते हैं वो थोड़े से क्लास में ज्यादा सोते हैं। ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है, हमारी तपस्या बेसिकली है हियरिंग, बहुत मुश्किल काम है, और कृष्ण एंजॉय दिस टू। सर्वलोक महेश्वर में से परमात्मा इज स्पीकिंग, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल दिस प्लैनेटरी सिस्टम, देन एज ए भगवान इज स्पीकिंग, ईश्वर सा सुहृद सर्वभूतानाम, दिस इज स्पीकिंग एज भगवान। इस श्लोक में परमात्मा के रूप में भगवान बोल रहे हैं पहला भाग, और भगवान के रूप में दूसरा भाग बोल रहे हैं, सेम कृष्ण सिंह सुहृद सर्वभूतानाम, आई एम वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ये भगवान के भाव से बोल रहे हैं। सिंपली यू नो दिस ज्ञात्वा माम इफ यू नो दिस, इसका मतलब हम जब जप कर रहे हैं तब क्या करना चाहिए, हमको क्या कहना चाहिए, कृष्ण प्रीति अर्थे जप विनियोग, आई एम चैंटिंग दिस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो ये हो गया ना भोक्ता, कृष्ण भोक्ता कब होगा, जब आप कहोगे कि मैं कृष्ण आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ये दिस इज ए साइंटिफिक वे। हमारे वैदिक सिस्टम में पहले लोग ऐसे ही करते थे, ये पाठ मैं कर रहा हूँ क्यों? Why I am chanting Bhagavad Gita? कृष्ण प्रीति अर्थे पाठे विनियोग, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अगर हम एक ये शब्द अपने जीवन में पक्का कर लें कि जो भी काम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, उसको और विस्तार करना है, यू वॉन्ट टू रियली एक्सपेंड ऑन दिस कंसेप्ट, देन यूज दी थ्री वर्ड हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे। हमारा सारा काम भगवान हरि गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए है, नॉट पर्सनल बट इन स्वार्थी, हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, जो ये जान लेता है शांतिम रिच्छति, वो पीसफुल होता है दुनिया में, देन इज पीसफुल। और दूसरे अध्याय में तो एक है अशांतस्य कुतः सुखम, इफ यू हैव नो पीस हाउ कैन यू बी हैप्पी, अगर शांति नहीं है तो सुख कहां से आएगा। तो अब इस श्लोक को पढ़ते हैं, ये श्लोक वर्स 22nd ऑफ 5th चैप्टर। दिस इज ए गुड एडवाइस फॉर ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा ये भगवान श्री कृष्ण का सलाह है, एडवाइस है, मशवरा है। सो नाउ इफ यू कैन सी दिस वर्स देन यू रिसाइड दिस वर्स। ये हि संश प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय रसेषु रमते बुद्धा। बुधा, बुधा मीन्स इंटेलिजेंट, बुधा मीन्स एनलाइटेंड इंटेलिजेंट। तो ये बुद्धिमान लोगों के लिए श्लोक है, those want to be, he is really Buddha for them। एक बुद्धू के लिए तो दुनिया सारी है, एक बुद्धू होता है, एक बुद्धा होता है। दिस इज फॉर बुद्धा नॉट फॉर बुद्धू। तो श्लोक का पहला लाइन क्या है, ये ही संश प्रसजा भोगा। संश प्रसजा मीन्स भोगा मीन्स एंजॉयमेंट, भोगा का मतलब है भोगना, और संश प्रसजा का मतलब सेंसेस का, सेंस ऑब्जेक्ट से इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों में भोग ढूंढना। When senses are trying to enjoy the sense object, that is called sansa prasaja bhoga। ठीक है, sansa prasaja bhoga का अर्थ समझ में आया, आंख कुछ देख के सुख लेना चाहती है भौतिक, आंख कुछ सुन के सुख लेना चाहता है, जीभा कुछ चख के सुख लेना चाहती है, टंग जस्ट टू टेस्ट समथिंग, तो इसको कहते हैं sansa prasaja bhoga। जो भी एंजॉयमेंट सेंसेस से होती है और सेंस ऑब्जेक्ट उसका विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं संस प्रसजा भोगा। ठीक है, इज इट ओके। अब दूसरी लाइन को सुनिए, ये बहुत भारी लाइन है। दुख योन्य एवते, दुख का अर्थ तो सबको आता है क्योंकि भोग के इतने एक्सपीरियंस हो गया है, ऐसा कोई नहीं हाथ ऊपर करता मैंने दुख देखा नहीं है, एवरीबॉडी हैज एक्चुअली एक्सपीरियंस ऑफ गुड दुख। अब दुख नहीं देखा होता तो बैरिन थोड़ी आते। यहाँ सुख ढूंढने के लिए आए। दुख तो सबने देखा है। तो योनि का अर्थ होता है गर्भ या जन्म स्थान, योनि का मतलब जहां जन्म होता है, द प्लेस वेयर समथिंग टेक बर्थ। एव मीन्स ओनली, all the sense enjoyment is place of birth of misery. Sab indriya bhog dukh ka janam sthan hai. To abhi aap batao ke dukh humko kahan se milta hai? Hamare apne bhog se. Dukh ka janam kahan hota hai? Isko aajkal ke commercial world mein bolte hain buy one get one free. एक के ऊपर एक फ्री. इंद्रियों का सुख लो, मुफ्त में दुख आपके पास आएगा. जस्ट सो सिंपल. और हम सब आजकल ऐसी एडवर्टाइज को तो रोज पेपर में देखते हैं, वन के ऊपर वन फ्री कहाँ है. ये तो बहुत टेस्टी चीज है. और ये यहाँ भगवान कहते हैं all the sense enjoyments are inevitably coupled with misery. उसके साथ आपको सिक्का जेब में रखना है तो दोनों तरफ रखना है, एक निकालेंगे नहीं. You have to keep both sides. So ये पहली लाइन का अर्थ हुआ, ये संस प्रसजा भोगा दुख योनिया. ये बते अब दूसरी लाइन में से पढ़ें, देखें क्या लिखा है. आद्य अंतवंत. आद्य का मतलब बिगनिंग और अंतवंत का मतलब एंड. तो जो एंजॉयमेंट इंद्रियों से है उसका बिगनिंग है और एंड है. बचपन में खिलौनों से जो सुख मिलता था, चाइल्ड को बच्चे को खिलौना मिला, सारा दिन खिलौने से खेलता था, खाना भूल गया. अब वही खिलौना आपके घर में पड़ा है, शोकेस में देखते भी नहीं. तो द एंजॉयमेंट जो सेंसेस की थी, इट हैज ए बिगिनिंग एंड इट हैज ए एंड. ये इसका आद्य अंत वंत. सो ऑल द एंजॉयमेंट व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट, दे आर टेम्पररी, दे हैव ए बिगिनिंग एंड ए एंड. का आदि है और अंत है, वो टेम्पररी है क्योंकि इंद्रियों से है और इंद्रियां शरीर में और शरीर भी टेम्पररी है. बॉडी इज आल्सो टेम्पररी. दिस इज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ प्रभुपाद बाय श्रील प्रभुपाद. व्हाई इट इज टेम्पररी? बिकॉज बॉडी इज टेम्पररी. भाई ये सुख क्यों टेम्पररी है? थोड़े समय के लिए क्यों है? शरीर भी थोड़े समय के लिए. सो इज इट क्लियर? रिवर्स का मीनिंग क्लियर है? ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते आद्य अंतवंत. कौन से है का मतलब अर्जुन इज एड्रेसिंग टू कृष्ण, इज एड्रेसिंग टू अर्जुन. ये जो अर्जुन आप समझ रहे हो कि युद्ध आप नहीं करोगे तो ये बच जाएंगे और आप एंजॉय करोगे, ये इट इज नॉट राइट. बिकॉज वन ऑफ द रीजन अर्जुन वॉज नॉट फाइटिंग वॉज एंजॉयमेंट. एक रीजन जो पांच रीजन में है कि अर्जुन नहीं फाइट करना चाहता था, वो ये था कि मैं इसमें कुछ एंजॉय तो नहीं करूंगा. एंजॉय कैसे करेगा भाई? मैं जीत के आऊं तो किसको बताऊं? इफ आई एम विक्टोरियस एंड आई हैव टू टेल समबडी. और जो कोई मुझे देखेगा तब खुश होगा ना. मैं जीत के आए बताऊं किसको? एकदम मर जाएंगे, फिर जीता किस काम का? सो आई विल नॉट रियली एंजॉय. इफ समबडी इज नॉट देयर टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन, देन व्हाट इज दिस? तो इसमें भगवान कहते हैं ये तुम्हारी एंजॉयमेंट टेम्पररी, टेम्पररी. व्हाट यू आर थिंकिंग इज टेम्पररी. न तेषु रमते बुद्धाः, डिवाइड मे पीपुल नेवर रमते मीन्स दे टेक प्लेयर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेंस एंजॉयमेंट. तो वाइज मैन कितने हैं दुनिया में? एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा कि मेरे राज में अंधे ज्यादा है कि आंख वाले ज्यादा है? आर ब्लाइंड पीपल इन माई किंगडम मोर आर विथ प्रॉपर विजन? बीरबल ने कहा महाराज अंधे ज्यादा है.
And the blinds are more. See, I think, how is there many blind? Yes. Maharaj blind chata hai.
Bola, prove it. Bola, chalo.
Aap cycle ke upar chalo. Maharaj. Shahanshah Akbar cycle chala ke chalo, suppose. Ab Maharaj agar cycle chalai, jo samne dekhe, ye kya Maharaj?
Abhi bola, likho blind mein. Dekh nahi raha, cycle chala raha hu.
तो बहुत से लोग देखते हैं फिर पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो जी जोन रहे तो मालूम नहीं है।
सो इस श्लोक के अंतर्गत एज पर दिस वर्स कितने बुद्धा हैं दुनिया के अंदर? मेरे ख्याल वही है जो स्टेच्यू में है। देयर ओनली द बुद्धा लेफ्ट। It's very difficult, really speaking.
एक और जगह श्री प्रभुपाद ने लिखा है 99.9% लोग नराधम है। 99.9 या 99 समझ लीजिए, नराधम है। नराधम मीन्स लोएस्ट अमंग द मेन, मीन्स दे आर नॉट बुद्धा इन एक्चुअली।
और कितने बुद्धा है? Then go to the 7th chapter and read this verse. Manushyanam sahasreshu kaschit yadati siddhai yadatam vi siddhanam kaschin mam veti tatvata.
This is the rareness of Buddhas. The wise people are very less. Out of thousands, manushyanam sahasreshu, hazaro mano, मनुष्यों में हार्डली वन इज ट्राइंग फॉर परफेक्शन सिद्धा। एंड परफेक्शन का अर्थ होता है दोज हु नो व्हाट डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सोल, उसको बोलते सिद्ध कौन है जो शरीर और आत्मा के अंदर अंतर जानता है। ये फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। And ऐसे out of thousands of such self-realized, यदताम भी सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः, hardly कोई एक होता है जो मुझे जानता है वो बुद्धा है। तो आत्म साक्षात्कार वाले तो ज्यादा होते हैं, जैसे सेल्फ रियलाइज में भी thousands, but out of them one is rarely a intelligent person who knows भगवान। अब दिन है कि रात है? रात है, कैसे पता लगा? क्योंकि प्रकाश नहीं है। तो ये तो बच्चा भी कह सकता है कि दिन है कि रात है, कि रोशनी है तो इज लाइट, तो दिन है और लाइट नहीं है तो रात है, राइट? अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से आज कितने लोगों ने आकाश में ऐसे देखा सूरज को? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन रियली सन टुडे? एक हाथ ऊपर हुआ, दो, तीन। अचानक देखा या देखने के लिए प्रयास किया? देखने के लिए प्रयास किया एक ने। इज ए फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता, एवरी डे कमिंग टू वेक अस अप, व्हाई डोंट वी रियली वैष्णव प्रणाम करें उसको, सुबह उठ के कहें कि आपका स्वागत है। पुराने जमाने के लोग स्वागत करते थे, दे यूज टू वेलकम सन, बिकॉज ये हमारी परंपरा है पुरानी। सन इज ए फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता, तो उसको सुबह स्वागत करना, देखने का प्रयास तो करना चाहिए ना। लेकिन कितना परसेंट रोज देखते होंगे? रोज मैं ये लॉजिकली कितने परसेंट रोज जो सूर्य को देखने का प्रयास करते होंगे जब अवेलेबल है? लेकिन अब रात को आप देखना चाहो तो नहीं देख सकते। अब देखना हो तो यहाँ से फ्लाइट पकड़ो, जाओ अमेरिका, जाके देखो तो उगता हुआ कहीं ना कहीं। यू हैव टू मेक एंडेवर रियली, देन यू कैन सी इट, राइट? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसका पहला रीजन ये है, to believe that God is light is like a child's understanding. जो डे और नाइट, तो बच्चा कह सकता है कि दिन है या रात है, रोशनी है तो दिन है, रोशनी नहीं है तो रात है. सो विदाउट सीइंग सन यू कैन से डे. सो जिनके पास इतना ही अकल है कि भगवान प्रकाश है, दे आर लाइक चाइल्ड एक्चुअली. दैट इज लेवल इज चाइल्डिश भगवान. इसलिए हम जब बच्चा छोटा होता है तो अपने बाप को कैसे बुलाता है, जब उसको बोलना नहीं आता है तब कैसे बुलाता है. पापा तो कहना नहीं आता है, क्या बोले, ऐसे ही बोलेगा ना, ये एक ही शब्द आता है उसको, ये तो उसको जन्म से करना आता है. जब बड़ा हो जाएगा तब तो नहीं करेगा, तब क्या बोलेगा, पिताजी का नाम बोलेगा, जैसे माय फादर. तो एक स्टेज में हम क्या भी कहते हैं भाई, तो सदा कहते हैं ओम ओम हम, ये बच्चे कहते हैं बाप को ऐसे बुलाते हैं, बड़े तो पूरे नाम से बुलाते हैं, बाप का नाम क्या है. तो ये बच्चों के स्तर का एक्चुअली ज्ञान है कि भगवान लाइट है और सिर्फ प्रणव उच्चारण ही सब कुछ है. चाइल्ड स्तर है बेसिकली. दूसरा स्तर है योग का, जिसमें भगवान को देखा जा सकता है, जैसे सूर्य को देख सकते हो. एनीबडी कैन सी सन, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते. इफ यू वांट, अभी देखना चाहो तो सुबह उठ के देख लेना, लेकिन देखते बहुत कम है और रात को नहीं देख सकते. ऐसे योगी लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करें, ध्यान करें, तो भगवान हृदय में दिखेगा. दैट परमात्मा दिखेगा हृदय में, जैसे सन को देख सकते हो, लेकिन देखने वाले उसके भी कम. तो ये परफेक्शन वाले जो लाइट वाले हैं, ये है हजार में सौ. आउट ऑफ हंड्रेड वन इज दोज हु कंसीडर लाइट एज ए गॉड. लेकिन उनमें से मुश्किल से कम है जो प्रयास करके परमात्मा को हृदय में देखते हैं. लेकिन ये कितना मुश्किल है आपके विचार में, टू बिलीव दैट देयर इज ए पर्सन हिज नेम इज विवस्वान एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सन प्लैनेट. ये कितना मुश्किल है, इट इज नॉट इजी. यू कैन नॉट रियली प्रूव इट. कोई प्रूव कर सकते हैं क्या इसको, नहीं कर सकते. ओनली यू हैव टू बिलीव द वर्ड ऑफ शास्त्र. तो शास्त्र के शब्दों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा. इट नॉट इजी. तो भगवान को समझना इजी नहीं है. भगवान को ब्रह्म ज्योति समझना आसान है, भगवान को परमात्मा समझना भी थोड़ा प्रयास करने से भी है, वी एंडेवर वी डू, पर भगवान को भगवान समझना इज नॉट इजी. उसके लिए देखने से नहीं होता है. जापान एक देश है, मानते हैं उसका एक प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई क्या है जापान का, है देखा है, फोटो देखा है. एक देश है उसको मानते हैं, ये भी मानते हैं कि उधर उसका प्राइम मिनिस्टर है, हमने देखा नहीं, कभी गए नहीं वहां. मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कौन से क्या आधार पे मानते हैं, व्हाट इज अवर लॉजिक टू बिलीव दैट सम प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री कॉल्ड जापान. न्यूज जापान की पता है वैल्यू कितनी है. भगवान विष्णु जब भोजन करते हैं ना, तो उसके बाद उनको पान खाना होता है. पान समझते हैं सब लोग, पान खाना, वो उसको मुखवास कहते हैं वैदिक. मुखवास मीन्स फॉर द फ्रेग्रेंस ऑफ द माउथ. तो जो भी सामने खड़ा होता है उसको कहते हैं पान लेके आओ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं. तो उस एक दिन की बात है, भगवान विष्णु भोजन किया और उस वक्त सामने यमराज खड़े थे, कहा जा पान ले आ. वो समझा नहीं, पूरे का पूरा जापान लेके आया. तो पूरा सुनामी जापान का जापान उठा के लाया. वो समझे जा पान लाया, उसको समझ नहीं आया क्या कहा, उसको तो यही काम करना आता है, पान ले आया. तो जापान पूरा लेके आ गया. सो एक कंट्री है जापान, उसका एक प्रेसिडेंट है, हम मानते हैं. कौन से आधार पे, न्यूज़पेपर का खबर पे है. और न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे चॉइसेस प्लेस क्या है, कहां बैठ के आदमी न्यूज पेपर पढ़ना पसंद करता है और न्यूज पेपर की उम्र कितनी है और न्यूज पेपर की एज कितनी है, एक घंटा भी नहीं, और चॉइसेस टॉयलेट है, और उसकी बात के ऊपर हमारे को विश्वास है कि एक कंट्री भी है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर भी है, और ये भगवत गीता जो मंदिर में पढ़ते हैं और व्यास देव ने लिखी है, किसी मूर्ख ने नहीं लिखी है, उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये तो भगवान को तो तब मानना पड़ेगा शास्त्र के आधार के ऊपर, देयर इज नो अदर वे। परमात्मा तक तो प्रयास करके कर सकते हैं, लेकिन ये डिसेंडिंग प्रोसेस है, इसमें अपने प्रयास से नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति का जो 12वां अध्याय वो शुरू होता है श्रद्धा से, और श्रद्धा ही उसका लास्ट, श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अति नेति है। इट्स ओनली श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय, कि श्रद्धा ये मंदिर बनाए इसलिए है कि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो, फेथ के लिए। आदव श्रद्धा साधु संघ, तो अवर डिवोशन स्टार्ट विथ श्रद्धा, हमारा भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है। श्रद्धा के बगैर, श्रद्धा विश्वास किसी के ऊपर करना पड़ेगा दुनिया, तो भगवान को मानने वाले बहुत कम हैं। बुद्धा बात कर रहे थे, न तेषु रमते बुद्धा, जो एनलाइटन है बुद्धिमान है वो इंद्रियों के सुख भोग में रमण नहीं करते। और ये प्रश्न पूछ रहे थे कितने लोग हैं जो बुद्धा हैं, तो उत्तर एक ही आ रहा था, क्या वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर। इसलिए समटाइम प्रभुपाद यूज टू कॉल दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज फॉर इंटेलिजेंट पीपल, दिस मूवमेंट इज फॉर एक्चुअली बुद्धा, ये बुद्धिमान लोगों के लिए। और फिर बुद्धिमान लोग दे कैन बी एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल टू फॉलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो भेड़ चाल होते हैं, दे आर लाइक शीप, दे जस्ट फॉलो सम अथॉरिटी लीडर। सो वी प्रभुपाद वांटेड रियली टू क्रिएट लीडर्स, ही वांटेड टू क्रिएट लीडर्स, लीडर्स इन द सोसाइटी, ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। बुद्धा जब जब आचरती श्रेष्ठ, देन यू बिकम श्रेष्ठ। बुद्धा का मतलब श्रेष्ठ, इज एग्जाम्पलरी, देन अदर विल फॉलो। सो द मैसेज ऑफ भगवत गीता इज अ साइंस एंड इट इज फॉर ए वेरी इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। सो फॉर्चुनेट, बहुत वो भाग्यशाली हैं जो भगवत गीता के अध्ययन करने में अपना जीवन सार्थक करते हैं, दे आर पुटिंग देयर लाइफ टू अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, मैसेज ऑफ गॉड। ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों का है। तो आज श्लोक, इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया, इसका नीचे लिया, लेट एवरीबॉडी रीड दिस। पर ये
इंटेलिजेंट पर्सन,
व्हेन वी से आई देन रियली अप्लाई टू अस भगवद गीता, इंटेलिजेंट पर्सन ना,
इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेस ऑफ मिजरी विच आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद मटेरियल सेंसेस। ओ सन ऑफ कुंती, सच प्लेजर्स हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड, सो द वाइज मैन डज नॉट डिलाइट इन देम।
अब इस श्लोक को ऐसे पढ़ने का प्रयास करो, आई विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन मिजरीज विच आर कमिंग फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, एंड आई विल बी वाइज बिकॉज दे आर टेम्पररी। व्हाट डू यू थिंक, इसको ऐसे पढ़ेंगे तब भगवद गीता हमारे काम की होगी, नहीं तो कहते ये अर्जुन का काम था, हमारे उसका इस पाक का, इसको हम अप्लाई, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। इसकी ये कि अगर मैं वाइज बनना चाहता हूं तो मुझे इंद्रियों के सुख में रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिजरी की जन्म स्थान है, द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ मिजरी, और ये टेम्पररी है, आएगा जाएगा। मैं टेम्पररी नहीं हूं, मैं परमानेंट हूं, तो इसलिए मेरे को बुद्धिमान बनना चाहिए। श्री प्रभुपाद का पर्पस इसका पहली लाइन में ये लिखा है कि इंद्रियों का सुख टेम्पररी है, क्योंकि शरीर टेम्पररी, शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होती है, जैसे बर्थ ऑफ ए बॉडी एंड डेथ ऑफ द बॉडी। आपने अपना जन्म देखा है, अपना मृत्यु देखेंगे? कोई कहेगा कि हमारा जन्म हुआ, कोई कहेगा हम मर गए, हम दोनों नहीं देखा। हम किसी ने अपना जन्म नहीं देखा है और कोई अपना मृत्यु नहीं देखेगा। यह इतना बड़ा सच है। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी माँ है, हमने मान लिया। किसी ने कह दिया तुम्हारा बाप है, हमने मान लिया, हमने तो नहीं देखा। तो शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो टेम्पररी हुआ। आत्मा का आना जाना होता है, सोल इज कमिंग एंड गोइंग, जन्म मृत्यु नहीं होता। शरीरों का जन्म होता है, मृत्यु होती है, आत्मा का आना जाना होता है, आवागमन बोलते हैं। आवागमन, आवा मीन्स आना, गमन मीन्स जाना, आवागमन। भगवान का अवतार होता है, ये तीन कंसेप्ट है, जिस क्लियर कंसेप्ट है। शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होता है, आत्मा का आना जाना होता है। वो आना जाना कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन भगवान का अवतार अपनी इच्छा से होता है। तो जो चीजें शरीरों से जुड़ी हुई हैं वो टेम्पररी, एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद बॉडी इज टेम्पररी। तो पहला प्रभुपाद जी का सेंटेंस ये है कि इंद्रियों के सुख टेम्पररी है और हर सुख दुख के दुख का जन्मदाता है। हर एक एंजॉयमेंट के अंदर ही दुख पलता है, उसका जन्म स्थान उसी के अंदर, सीड उसी के अंदर, एंजॉयमेंट के अंदर ही सफरिंग का सीड है, मिजरी का सीड है। तो जो रियली मिजरी बच्चे बचना चाहते हैं उनको असली सुख को ढूंढना चाहिए ना। Why we are trying to enjoy this sense? To be happy. Happy, सुख के लिए करना चाहते हैं ना। But that सुख is temporary. But we are not temporary. तो हमारे को permanent सुख ढूंढना चाहिए, कहाँ है ना? So that is the wise कौन है जो permanent सुख को ढूंढता है? इसका इस श्लोक को और तरीके से देखेंगे तो इसका अर्थ ये है, the one who is aspiring for higher happiness, free from misery, is wise. Anantam sukham, ananta sukh. Anant means unlimited. Ananta sukh or dukh nivarti, free from the misery. जो जिसका goal ये है वो wise है। तो हमारे को wisdom के लिए क्या करना पड़ेगा? अनंत सुख को ढूंढना पड़ेगा। So then Srila Prabhupada is quoting a verse from Padma Purana, I think, from Padma Purana. देखिए, रमन्ते योगिनो अनंते, रमन्ते योगिनो अनंते। जो योगी हैं वो अनंत में रमण करते हैं, अंतवंत में नहीं, अनंत में। एक अनंत है, एक अंतवंत है। देखो, जो जो वर्ष में सुख था वो अंतवंत है, आने जाने वाला है, और जो योगियों का सुख है वो अनंत है। तो रमन्ते योगिनो अनंते, योगिनो का अर्थ क्या होगा? योगी कौन कहलाते हैं? जो भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का मीन्स दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद गॉड। एंड प्रोसीजर कनेक्ट भाई किसी से कनेक्ट आपको होना है तो कैसे होगे, भाई किसी से आपको रिलेशन डेवलप करना है तो कैसे करोगे, हाउ कैन यू यू रियली डेवलप रिलेशन विद समबडी बाय व्हाट, बाय टॉकिंग, बात करने से,
फ्रेंडशिप,
हेल्पिंग, हियरिंग अबाउट, सर्विंग, ये किसने बोला, ये सबसे अच्छा है, सबको पसंद है, सेवा कौन करेगा, सर्विस नॉट सेल्फिश, सर्विस में एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, सर्विस विथ अफेक्शन एंड लव, अगर किसी से हमें रिश्ता जोड़ना है तो वो होगा प्रेममयी सेवा से, राइट। नॉर्मल कोर्स में भी आपको किसी कंपनी में किसी ऑफिसर से तो भी थोड़ी सेवा करोगे, मीठा बोलोगे तो रिलेशन डेवलप होगा, इट्स वेरी सिंपल, ऑर्डिनरी लाइफ में भी। सो किसी से रिश्ता जोड़ना, योगी का मतलब रिश्ता जोड़ना, तो रिश्ता जोड़ना किसी से है तो उसका एक ही साधन है रियली प्रेममयी सेवा। श्री प्रभुपाद पहले आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति का अर्थ लिखा है प्रेममयी सेवा, डिवोशन मीन लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। सो योगी नो कौन है, जो अनंत सुख को ढूंढते हैं, मिलता है जिनको, वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। तो अनंत सुख जिसको चाहिए वो योगी बने, योगी बने का मतलब ये नहीं कि लाल कपड़े पहने, नहीं, योगी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ ले, योगी का मतलब है कि भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाए। हमने तो एक डिफरेंट मीनिंग निकाल के रखी है योगी शब्द की, योगी मीन्स हु इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड बाय द प्रोसेस ऑफ लविंग सर्विस, दैट इज रियल मीनिंग ऑफ योग। रमन्ते योगिनो अनन्ते चिदानन्दे, वर्ड आगे आगे है, सत्य आनंद चितात्मनि, सत्य आनंद चितात्मनि, ये दो शब्द कैसे आ गए, क्यों ऐसे योगी करता है, क्योंकि वो सत्य है, आत्मा है, सदानंद है, सत्य, सत्य दैट वर्ड सच्चिदानंद, दैट इज वर्ड सत्य इज दैट वर्ड, इन फर्स्ट लाइन दी थ्री वर्ड्स आर देयर, आनंद सत्य चित्त, कैन यू सी दी वर्ड, सत्य वर्ड दी वर्ड है, रमन तो योगिनो अनंते सदा आनंदे, सत्य सत्य आनंद, सत्य आनंद मीन्स, सत्य मीन्स एटर्नल, सत्य चित्त आनंद, सत्य एटर्नल, सत्य का मतलब एटर्नल है ना, चित्त का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद का मतलब ब्लिसफुल। तो क्योंकि आत्मा है तो योगी कहां कौन से स्तर पे काम करता है, सेंसेस के स्तर पे काम नहीं करता है, आत्मा के स्तर के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, बुद्धिमान कौन है, जो आत्मा के स्तर के ऊपर काम करता है, वन हु इज वर्किंग एट दी लेवल ऑफ सोल। और सोल के फिर क्या, सोल का सिम्टम क्या, सच्चिदानंद, सो ही इज वर्किंग एट दैट प्लेटफॉर्म, then he will get the eternal happiness. If he work at a sensual platform, then he will get temporary happiness. So, abhi division kya ho gayi? Bodily and senses platform always give temporary happiness with more misery. Temporary happiness, more misery. अपने जीवन में देख लो, सुख 15% होगा तो 85% परेशानी होगी, जगह इसका कभी एनालिसिस करके देखना, रियली सुख बहुत कम है और परेशानी बहुत ज्यादा है। हैप्पी मोमेंट जिंदगी की कितनी है आप, वो एल्बम में थोड़ी सी दिखती है, बाकी सारी जिंदगी दुखमयी है। हैप्पी मोमेंट आर ओनली इन दी फोटो एल्बम, बाकी सारी जिंदगी दुखमय, उसी को बोलते हैं हैप्पी मोमेंट है हमारे। वैसे भी लिखा है बारी बिंदु, हैप्पीनेस दुनिया में कितनी है, बारी बिंदु, बारी का मतलब रेती, जैसे यहाँ बहुत पड़ी है, और बिंदु का मतलब एक पानी का ड्रॉप। अब प्यासे को ऐसे डेजर्ट में एक ड्रॉप पानी का मिले तो क्या सुख होगा? तो इस दुनिया का सुख इतना है, इस दुनिया में सुख इतना है। जस्ट वैसे भी आप देखो कि बचपन में तो हमें मालूम नहीं क्या सुख मिला क्या, तो हम तो रोते रोते बहुत समय तो रोने में गुजार दिया। स्कूल जाने के लिए रोना, कुछ चीज नहीं मिले तो रोना, बहुत रोने में टाइम चला गया। स्कूल पढ़ते पढ़ते वो परेशानी में बात टाइम गुजर गया। 10-15 साल एक रियली जिंदगी के मिलते हैं, उस वक्त हम पागलों की तरह पैसा कमाने के लिए परेशान होते हैं। जो रियली जब हमारी जिसको टेम्पररी एंजॉयमेंट का हाईएस्ट लिमिट कही जाए, उस वक्त में हम पागल हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और जब पैसा आ जाता है तब एंजॉय करना चाहते हैं, तब शरीर काम नहीं करता। ये बहुत बड़ा जिसको कहा जाए आश्चर्य है, एस्टॉनिशमेंट है। ये तो भगवान ने बताया एक भक्त को कि दुनिया में सबसे बड़ा एस्टॉनिशमेंट ये है कि जवानी जिसमें एंजॉय करना चाहिए उसमें लोग पागल की तरह पैसे के पीछे पड़ते हैं, और फिर जब पैसा आ जाता है तब एंजॉय करना चाहते हैं, और फिर पैसा सारा एंजॉय वो एंजॉयमेंट में लगाना चाहते हैं। मूर्ख का पैसा भी गया, जवानी भी गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। लास्ट रियली यूथ एंड देन ही बिकम ओल्ड एंड देन ही हैज मनी एंड नाउ ही कैन नॉट एंजॉय, सो ही स्पेंडिंग मनी टू अगेन बिकम यूथ, बट ही कैन नॉट बी आइदर। तो पैसा भी गया और जवानी भी गई। तो ये टेम्पररी सुख जो है ये शरीर और इंद्रियों के स्तर का है। इसलिए प्रभुपाद जी की कमेंट्री क्या है हरे कृष्णा मंत्र के ऊपर, दिस इज साउंड वाइब्रेशन इज बियॉन्ड बॉडीली प्लेटफॉर्म, सेंसुअल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, इट इज फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। इसकी वाइब्रेशन आत्मा के स्तर की है, तो ये अनंत सुख देगा। सदा आनंदे चिदात्मनि, चिदात्मनि तो देट नॉलेज। ये भगवत गीता जो है ये श्री कृष्ण का चिदानंद, ये चिदात्मनि है। भगवत गीता इज ए नॉलेज कमिंग फ्रॉम कृष्ण, चिदात्मनि ये भगवान के हृदय का प्रकाश निकल के बाहर आया है। गीता ने हृदय, भगवान श्री कृष्ण कहता है गीता मेरा हृदय है, तो जो भगवान के हृदय में ज्ञान है वो गीता के रूप में बाहर निकल के आया है, ये चिदानंद है। इसके लिए भगवान का एक नाम है राम। लास्ट लाइन सेज रमन्ते योगिनो मनन्ते सदात्मने चिदानन्दे इति राम पदेनाकते परम ब्रह्म आनन्दे। तो इसलिए भगवान का एक नाम राम है जो परम आनंद प्राप्त कराता है। तो ये राम शब्द के जी हरे कृष्ण मंत्र में राम जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड राम, दैट राम इज मींस वन हु गिव्स प्लेजर, आनंद देने वाला। एक वो संत ने ये लिखा है जे सुख को चाहो सदा शरण राम की ले, जे सुख को चाहो सदा, सदा मीन्स फॉर एवर। अगर सदा के लिए सुख चाहिए मतलब आनंद सुख चाहिए शरण राम की ले, तो फिर भगवान राम के शरण में जाओ, क्योंकि वो सुख दाता है, वो सुख का स्वरूप है। तो दिस फ्रॉम दिस वर्स वो कवि किसी ने जिसी महात्मा ने ये कहा है लिखा है, ये टेकन मीनिंग फ्रॉम दिस वर्स, ओरिजिन कहीं उसकी होनी चाहिए शास्त्र में। इसके बाद श्री प्रभुपाद जी एकदम दूसरा एक श्लोक कोट करते हैं इस पर्पट में, वो दिस वर्स इज स्पोकन बाय महाराज ऋषभ देव, वन ऑफ द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। और ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऋषभ मीन्स द बेस्ट, ऋषभ श्रेष्ठ। और एड्रेसिंग ऋषभ देव एड्रेस किसको कर रहा है? महाराज भरत को, जो उसका एल्डर सन है और जिसके नाम से All the land surrounded by salty water is called Bharatvarsh. Vedic terminology mein, all the land which is surrounded by salty ocean is called Bharatvarsh. Jo 9 verses hai Jambu Deep mein, Jambu Deep hai, usme 9 verses hai. Unmein se 8 verses dikhte nahi hai, they are subtle, we cannot see them. Only one verse is visible, dekhne mein ek aata hai, uska naam hai Bharatvarsh. And that is surrounded by a salty ocean. Uske center mein verse hai, uska naam hai Ilavarsh. To is Bharatvarsh ka pehle naam to dusra tha, Ajanab Varsh. Lekin Maharaj Bharat ke baad uska naam Bharatvarsh ho gaya. Iska arth hi hum lete hain. This teaching is for the people living in Bharat. And what is Bharat actually? Bharat is whole planet Earth. Us Bharat Varsh ke andar ek Bharat Khand hai. Khand means part of that Bharat Varsh. Wo aap kabhi Pandit ji ko sankalp padhte hue sunenge, Jambudeep pe Bharat Varshe Bharat Khande. Bharat Khande ka matlab that portion of the land which is between Kanyakumari and Himalaya, this area, Jamuna, that is called Bharat Khande. Baki sara Bharat Varsh kehlata hai. Abhi main padh raha tha, those 18 days of Mahabharat war. So, like a Shalya, the maternal uncle of Nakul and Shahadev, do Pandu ka mama, wo Iraq ka raja tha. Uski sena Iraq se aayi thi. वो इराक से, ये तो शकुनी तो अफगानिस्तान से गया ही था, ये पहला टेररिस्ट अफगानिस्तान ये अफगानिस्तान का पहला टेररिस्ट महाभारत का, जिसने सारा प्लान प्रोग्राम बनाया, ये कोई नया नहीं है. लेकिन वो शल्य मामा इराक से आए थे और एक भगदत्त उसमें एक वॉरियर भगदत्त था, वो चाइना से आया था. और चाइना वालों की आंखें छोटी है, उसकी आंखें छोटी, और ये ऊपर बुड्ढा हो गया था, ये नीचे आ गया था, तो एक पट्टा ऐसे बांधता था देखने के लिए. और उसको मारने के लिए अर्जुन को पहले उस पट्टे को भगवान ने कहा पहले ये तोड़ो, तब के देखेगा नहीं तो मरेगा नहीं. वो पूरी ब्रिगेड एक चाइना से आई थी. तो ये पूरा भारतवर्ष तो उस वक्त में इसका नाम भारतवर्ष ही था, कुछ अलग नहीं था. ये तो ये फैक्ट फिगर्स जो है वो तो हिस्ट्री में अवेलेबल है, कहीं भी अभी जाके देखते हैं तो सब आपको ये ओल्ड 500 साल पहले स्वर्ण भूमि नाम था थाईलैंड का, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि उसका पुराना नाम है. अभी तो उन्होंने एयरपोर्ट को लिखा है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, और उस एयरपोर्ट के मिडिल में समुद्र मंथन का पूरा बड़ा डायग्राम बना हुआ है, और हर चौराहे के ऊपर एक ब्रह्मा जी बैठा है और उसको पूजा करते हैं. थाईलैंड, मलेशिया, उसको मलाया बोलते थे, मलाया चंदन जहां से आता है, मलाया हिल, तो भागवत में उनका वर्ण है. सुमात्रा, इंडोनेशिया और आगे फिलीपीन, ये पूरा इस एरिया को श्री विजय क्षेत्र कहते थे. ये श्री विजय इसका नाम था, ब्रह्मा ब्रह्मदेश, और ये श्री विजय, ये पूरा एक क्षेत्र वैदिक कल्चर अभी तक वहां आपको मिलेगा. तो याद तो भारत, भारत ये जो श्लोक है, भारत महाराज को संबोधन किया एड्रेसिंग टू द भारत, द मैसेज इज फॉर द होल भारत वर्ष. और वो मैसेज क्या है कि इंद्रियों का सुख तो सब जोनियों में अवेलेबल है, इन ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ द सेंस एंजॉयमेंट इज अवेलेबल. तो गधे कुत्ते बिल्ले को भी अवेलेबल है, सुअर को भी अवेलेबल है, इट्स जस्ट विड भुजान, इट्स तो इस टू लीटर को भी ये अवेलेबल है. प्रभुपाद ने एक बार कहा कि इवन इफ यू गिव टू द पिग हलवा ही विल नॉट ईट, ही ओनली ईट दिस टू. तो एक अंग्रेज ने, अमेरिकन ने बोला हाउ कैन दैट बी, वो हलवा ले गया पिग के पास, ठीक है, हलवे को देखा भी नहीं, और जहां बैठा था वहां से उसने खाते खाते उसके ऊपर भी डाला वही कचरा. वो हलवे को देखा भी नहीं, पिग ने नहीं खाया हलवा, पिग ने ये लिखा है, ट्राई करके नहीं खाएगा। सो ये इंद्रियों का सुख तो पशुओं को भी अवेलेबल है, इसलिए मेरे पुत्रों मानव दुर्लभ जन्म मिला है तो अनंत सुख को जो आत्मा के स्तर का है उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। ये इसके बाद का वर्ष है, इसके नीचे लाओ। नायं देहो देहभाजान लोके कष्टान कामान अरहत्ते विड़भुजान ये तपो दिव्यं पुत्रता ये न सत्वं शुद्धयाद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ब्रह्म सौख्यम वो जो आत्मा का सुख है वो अनंत है, उसके लिए तपस्या करो। तपो दिव्यम पुत्र का, तपो दिव्यम पुत्र का। मेरे ख्याल में समय हो गया आज का, कल यहाँ से आगे दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो आज हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि बुद्धा लोग दुनिया में कम है, इसलिए हमको बुद्धा बनने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसके लिए आत्मा के स्तर के सुख को ढूंढना चाहिए और भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए वो सुख सरलता से दो तरीके से मिलेगा, एक भगवान के नाम जपने से, एक भगवान के प्रसाद को आनर करने से। तो आप 5-7 मिनट भगवान का नाम जप लीजिए, फिर भगवान के प्रसाद को आनर कीजिए और इस दिव्य सुख का थोड़ा सा अनुभव करके जाइए और फिर इसको और जीवन में बढ़ाइए। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न है, एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट? यस श्रीधरी माधव जी। यस
आपसे सुनते हैं तो वक्त महसूस होता है हमको करना है, लेकिन जब ये हमें बाहर जाते हैं फिर मन वही चिकन पर लगता है हम इंग्लिश को करना है, इसको बताने कितने जन्म लगेगा इसको निकालने में।
अगर आपके पास सीव है, सीव सीव समझते ना, उसमें नदी का पानी भरना हो तो आएगा। एक स्टूडेंट था, गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ही आप जैसा उधर पूछा कि जब कथा में आते हैं तो मन करता है कि भगवान का नाम ले, बाहर जाते हैं तो फिर दुनिया याद आती। तो गुरुजी ने कहा बेटा वो अंदर एक टोकरी पड़ी है, टोकरी मतलब बास्केट, जाओ नदी से भर के आओ। अब टोकरी कैसे भरेगी, 50 बार टोकरी को पानी में डाला, भरी नहीं, वापस लाया। बोला गुरुजी टोकरी भरी नहीं। बोला बेटा क्यों? बोला इसमें इतने पर सुराख है तो सब कुछ निकल गया। गुरुजी ने बोला बेटा तुम यहाँ बैठते हो तो दो कानों से सुनते हो, लेकिन बाहर जाते हो तो इतने सोराख तुम्हारे है सब बह जाता है। तो बेचारा दुखी हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा देखे जरा टोकरी को नजदीक से देखो, तुम जब ले गए थे तब कैसी थी अब कैसी है? तो जब ले गए थे तो इसके ऊपर बहुत दिनों की रखी थी, पहले मिट्टी थी और ये बहुत कड़क थी, इट वॉज टू हार्ड। तो पानी में डाला है तो धुल गई है, थोड़ा थोड़ा लकड़ी मोटी हो गई है। बोला बेटा भरी नहीं तो कोई नहीं, धुली तो सही, तो यहाँ तो अभी धुलता है, थोड़ा भरने में टाइम लगेगा। और ज्यादा बार बार डालेंगे तो एक समय आएगा कि टोकरी की लकड़ियां मोटी हो जाएंगी बांस की और कुछ पानी उसमें रहने लगेगा। इसलिए सुबह शाम रोज ये भागवत तो गीता सुनने का प्रभुपाद ने ऐसा फार्मूला रखा है कि आस्ते आस्ते ये सौराख छोटे होते जाए कि भर जाए जीवन भक्ति से। लेकिन दूसरे एक महात्मा ने दूसरा उत्तर दिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिलीलीटर ऐसे सेंट लगाओ और बाहर जाके सीधा ही एक सीवेज के अंदर उतर जाओ, गटर के अंदर। जब वहां से बाहर आओगे तो खुशबू सेंट की आएगी कि सीवेज की आएगी? ऐसे हम कोई हफ्ते 10 दिन में एक बार कथा सुन लेते हैं तो सेंट लगा के जाते हैं फिर सीधा गटर में। तो प्रभाव किसका ज्यादा दिखेगा? उसका दिखेगा। लेकिन फिर भी वो है कि धुलेगा तो सही। it is better. इसलिए only single bottom line bhakti के लिए है association. Devotee association is only the saving grace. वही एक हमारा anchor है जो bhakti में हमको बचा के रखेगा और आगे बढ़ने में सहायता करेगा. Mahaprabhu says only association of devotees is a single bottom line for devotional service to progress. That's the only thing. Yes. ये भारत खंड का लगता है. वैदिक संस्कृत में भारतवर्ष की ये डेफिनेशन भारतखंड, वो भारतखंड तक ही रहे. और साधु तो भारतखंड से बाहर ही कभी नहीं गए, क्योंकि समुद्र से बाहर जाना नहीं है हमें, ये पुरानी मान्यता है. लेकिन भक्ति देवी ने नारद को ये कह दिया भागवत के मातम में, अगर भारतखंड के लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा आदर नहीं करेंगे, तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी. She told to the Narada that if the people of the Bharat will not respect and accept me, then I will go overseas. Srila Prabhupada ke 100 saal janam satabdi mein kuch mahatma Vrindavan mein keh rahe the ke this verse of Padma Puran prove that bhakti entered in the heart of Prabhupada and went overseas. Because nobody was actually accepting her. So bhakti, murti mati bhagwan, Prabhupada ji ke hirde mein baith ke samundar paar chali gayi. Kyunki koi usko accept nahi kar raha tha. Aur phir unhone kaha ki this person has given bhakti to the whole world. Tab se bhakti wapas wahan se duniya mein aayi hai, to Prabhupada ke is antaratma Krishna bhavana amrita ke dwara duniya ko mili. That bhakti really left bhakti in the heart of a person. Ye kuch mahatmaon ne apni realization batayi. So bhakti left from bhakti. Prabhupada brought it back. Aur koi kisi ka prashn? So Prabhupada ki jai. Bhagavad Vani Bhagavad Gita ki jai. Mahaprasad ki jai. Hare Krishna. Thank you.